जय माँ। हम लोग सावित्री में बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज और उसमें पेज नंबर पृष्ठ संख्या 60 पेज नंबर 60 पर हैं। वहाँ प्रारंभ से शुरू करेंगे, वहाँ फर्स्ट लाइन से पेज 60 पर। तो श्री अरविंद जब हम लोगों को जीवन को समझाते हैं तो इसको देखने के दो नज़रिए हैं। एक है जिसको हम बाइनरीज आज की भाषा में यूज़ करें, बाइनरीज। बाइनरीज क्या होते हैं? गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, ब्राइट एंड डार्क। तो बाइनरी से जब हम जीवन को समझने की चेष्टा करते हैं तो हम उसको एक तरह से जहाँ जो चीज़ें हैं वैसे रोक करके देखते हैं और नहीं समझ आती हैं, क्योंकि अभी हाल में भी आपने देखा होगा कि किसी ने कोई बयान दिया था लड़कियों के ऊपर, लिविन के ऊपर। तो ये बाइनरी देखने का तरीका, ये नज़रिया पुराना हो चुका है, क्योंकि ये एक मॉरलिस्ट जजमेंटल सेंस से निकलता है। लेकिन जो नया तरीका आने वाला है आगत युग में वो वेदांतिक आधार पर होगा, और वेदांतिक आधार पर ये एंशियंट भारतवर्ष में भी आप देखेंगे जहाँ बाइनरीज नहीं पाते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है, अगर हम स्क्रिप्चर्स को देखें, महाभारत रामायण, बाइनरीज नहीं मिलते हैं वहाँ पे यूनिटी के हिसाब से। तो यूनिटी के हिसाब से हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल रावण कौन है? रावण द्वारपाल है विष्णु भगवान का, फिर वही रावण गिरता है असुर योनि में, फिर वही रावण शिव का भक्त बनता है, फिर वही रावण भक्त से मुड़ करके एक असुर के रूप में प्रकट होता है, फिर वही रावण अंत में मोक्ष परम गति को प्राप्त होता है। तो ये अगर हम इसमें देखते हैं कंटिन्यूम में देखा गया, कंटिन्यूम में मतलब आप यूनिटी के बेसिस पर, तो वहाँ अंधकार और प्रकाश ये एक दूसरे के मारक नहीं है उस सेंस में, परंतु एक दूसरे के एक ही सत्य के दो ध्रुव हैं और जीवन एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जा रहा है। यही वो प्रार्थना है, असदो मा सद्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्युर मा अमृतम गम्य। ये लाइफ की यात्रा है, इवोल्यूशन की यात्रा है। जब इस कंटिन्यूम में हम देखते हैं तब ये जो उक्ति है वो चरितार्थ होती है, एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। कहने का अर्थ ये कि आप यहाँ से प्रारंभ होती जर्नी ग्रे जोन से जाती हुई ऊपर। तो पिछली बार श्री अरविंद ने हम लोगों को जो अदर एंड यानी जो सुप्रीम एंड पर जो फ्लेमिंग गॉड्स हैं, जो भगवान की जो महिमा है उसका वर्णन किया, भगवान की महिमा अपने पूर्ण दिव्यत्व में जब प्रकट होते हैं और वहाँ जो उनके अंदर से आदि देव प्रकट होते हैं और वो कैसे सृष्टि को देखते हैं, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, ये पूरा हम लोगों ने वर्णन सुना। बीच में उनको मीडिएट, वो तो उस वहाँ पर हैं लेकिन इस धरती पर तो स्वयं भगवान इमिनेंट के रूप में इस धरती पर भी हैं, अलाइव इन ए डेड रोटेटिंग यूनिवर्स, वी वर्ल नॉट हियर अपॉन ए कैजुअल ग्लोब। तो हम जब चल रहे हैं हम अकेले नहीं चल रहे, भगवान हमारे साथ साथ चल रहे हैं, साथ ही नहीं चल रहे, वो हमको ले के चल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा, और ये भी आश्वासन है कि एक समय आएगा जब हर किसी को, ये परम आश्वासन है हर किसी को, ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन एंड एनिवर्सरी ऑफ अवर बर्थ सबलाइम, अवर सोल शैल जस्टिफाई इट्स चेकर्ड वॉक, ऑल शैल कम नियर दैट नाउ इज नॉट और फार। जो अभी लगता है बड़े सुदूर कहाँ हैं, वो सब हमारे अंदर, वही उनकी महिमा हमारे अंदर भी, हर मनुष्य के अंदर धीरे धीरे कालांतर में विकास क्रम के माध्यम से प्रकट होगी। ये हम लोगों ने पढ़ा पिछली बार। अब प्रश्न उठता है कि हाँ वहाँ की बात बड़ी सुंदर है, व्हाट अबाउट हियर, यहाँ क्या हो रही है, यहाँ कौन सी घटना हो रही है। अब पेज नंबर 60 हियर, अब देखिए शेरविन क्या उनकी लिखने के अंदाज देखिए, हियर मीनवाइल एट द स्पिरिट्स अपोजिट पोल। एक्चुअली लगता है ठीक है ये शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में हियर मीनवाइल, पर अगर आप इसको थोड़ा सा भी टच करके देखते हैं, हियर मीनवाइल, मीनवाइल क्या हो रहा है कि एक वहां पे खेल चल रहा है कि यहां पे चल रहा है, उसमें एक साइमल्टेनिटी का आभास है कि यहां क्या हो रहा है, ये नहीं कि या तो वहां हो रहा है या यहां हो रहा है, दोनों जगह एक ही सत्य एक्ट कर रहा है। तो यहां हियर मीनवाइल एट द स्पिरिट्स अपोजिट पोल, ये उन्हीं के अंदर है सब कुछ लेकिन ये उसका एक ही सत्य के दो ध्रुव हैं। In the mystery of the deeps that God has built, again आश्वासन है, गहनतम अंधकार जिसमें वो स्वयं छिपे हुए हैं, किसने बनाया? उन्होंने ही बनाया। देखिए इसमें कितना बड़ा आश्वासन आता है, क्यों बनाया इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो बाद में बताएंगे, पर पहले हमको ये ज्ञात करा रहे हैं कि ये जो महाअंधकार है ये भी उन्हीं का एक मास्क है. फॉर हिज अबोड बिलो द थिंकर साइट, और वहां कौन छुपा हुआ है? When darkness was dense and covered with darkness, he was seated within it immense and alone. मुझे तो ये पंक्तियां इसलिए बड़ी सुंदर लगती हैं, कई कारण हैं, किंतु ये कि भाई आदमी का भय पूरा भाग जाता है. क्यों? महाअंधकूप में भी कौन है? हमारे सखा हैं, हमारे प्रियतम हैं. ठीक है, उन्होंने थोड़ा चादर वादर लपेटी हुई है, छुपने की चेष्टा कर रहे हैं. आप उनसे कह सकते हो कि भगवान ये ज्यादा छुपन छुपाई का खेल मत खेलो. यही है ना प्रहलाद की कहानी, हिरण्यकश्यप को क्या कहता है, कहते हैं इसमें भी भगवान है, यहां पर खंभे के अंदर भी. खंभा किस चीज का बना है? लोहे का. तब स्टील नहीं हुआ करती थी तो लोहे का खंभा है. तो कहते हैं हाँ है इसके अंदर, ये जड़ के अंदर, कहते हैं बिल्कुल है. अब वो क्या करता है, अपनी गदा से उस लोहे खंभे को तोड़ता है. तो भगवान नरसिंह अवतार रूप में प्रकट लेते हैं. पूरी इवोल्यूशन की कहानी है उसके अंदर, कि जड़ तत्व के अंदर भी भगवान ही छिपे. इन दिस कॉम्प्रोमाइज ऑफ ए स्टार्क एब्सोल्यूट ट्रूथ विद द लाइट दैट ड्वेल्स नियर द डार्क एंड ऑफ थिंग्स. एक और एब्सोल्यूट ट्रूथ जहां कोई शेडो नहीं आ सकती, छाया नहीं आ सकती. देखिए कितनी सुंदर है, हमारे पुराणों में क्या कहानी है. सूर्य की पत्नियों के नाम, एनीबॉडी नोज? संध्या और छाया. देखिए छाया को सूर्य सूर्य लोक से निकाल देते हैं, वहां छाया नहीं आ सकती. और उनसे कौन जन्म लेते हैं? यम और शनि महाराज. देखिए कितनी अद्भुत कहानी है, मतलब सब कुछ समझा दिया है हर तरह से. तो उसकी बात हो रही है कि एक और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ जहां ना छाया है ना अंधकार है ना एरर है, और वहीं पर वो प्रकाश जो धीरे धीरे ये डार्क एंड में भी है लेकिन गुप्त हो गया है, लुप्त हो गया है. इन दिस ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ डिवाइन डिस्गाइज. ट्रेजेडी क्यों है? क्योंकि जब वो डिस्गाइज भगवान जैसे अशक्त विवश होके पड़े हुए सूर्य पर ग्रहण लग जाता है तो ट्रेजेडी है. लेकिन वो क्यों है वो डिस्गाइज? और जब हम पहचान लेते हैं कि ये भी तो भगवान ही है, महाअंधकार महाकष्ट पीड़ा इसमें भी वही छिपे हुए हैं, तब वही जो ट्रेजेडी है वही एक डिवाइन कॉमेडी में परिवर्तित हो जाती है. क्योंकि तब हम क्या देखते हैं कि खेल खेल रहे हैं, मजेदार खेल. हमको रूल्स नहीं पता है और हमको ये नहीं पता है कि वही खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनिटी की कॉन्शियसनेस नहीं है. बाइनरी में हम देख रहे हैं जीवन को, भगवान तो वहाँ हैं, यहाँ तो शैतान है, प्रकाश वहाँ है, चल खुश रहो घर आपने, अब रहना भाई विदेश, या वो क्या है मनाडे का गाया हुआ कि लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल. अरे ससुराल को तो बनाना है बाबुल का घर. तो वो ट्रेजेडी कॉमेडी ऑफ डिवाइन डिस्गाइज. दिस जब तक हम अज्ञान में, ये ट्रेजेडी है, सिंपल है. माँ से किसी ने पूछा कि कहते हैं कि भगवान का खेल है, डिवाइन प्ले है. कहती हाँ लेकिन जब तुम यहाँ फंसे हुए तो तुमको नहीं समझ आता है. तब तुमको लगता है किसी क्रूएल व्यक्ति ने बनाया है. और शेरविंद का एक एफोरिज्म भी है इसके बारे में, उसमें कहते हैं कि बिकॉज यू हैव नॉट प्लेड विथ कृष्णा देयर फॉर यू डोंट अंडरस्टैंड. तो लगता है कि ये संसार तो किसी क्रूएल टॉर्चरर ने बनाया होगा. और जब तुम उनको जान लेते हो, उनके साथ खेलना शुरू कर देते हो तो बड़ा मजा आता है. दुनिया का सबसे पुराना खेल है छुपन छुपाई. बड़ा मजा आता है. तो है ना बच्चे सब लोग खेलते थे. तो ये भगवान का बनाया हुआ, इन्वेंटेड बाई डिवाइन हिमसेल्फ, छुपन छुपाई. In this tragic comedy of divine disguise, this long, far seeking for joy ever near. अब छुपन छुपाई में क्या होता है, वो छिपा होता है ना, उसको ये भी नहीं मजा आता है कि कोई मुझे खोज ना रहा हो, वो बोरिंग हो जाता है गेम. तो वो क्या करता है, थोड़ी देर में कुछ इंडिकेशन देता है, मैं यहाँ हूँ, होता है ना, कभी कभी पीठ पे मार करके चला जाएगा, तब मजा आता है ना गेम का. अगर वो छिपे रहेंगे तो क्या मजा आएगा. तो भगवान भी ऐसे करते हैं, ल्योर करते हैं. इस ऑब्जेक्ट में मैं हूँ, आप गए गायब हो गए. इस व्यक्ति में हूं जिसको तुम बहुत प्यार करते हो ना, इसमें हूं गए गायब हो गए. इस गैलरी में मैं हूं। अब हम जहां जहां जाते जॉय एवर नियर मिल गया, अब फिर क्या होता है, खो गया इन दिस डिवाइन डिसगाइज। देखिए कितना सुंदर होता है, ऐसे देखें खेल को। इन द ग्रैंडियोज ड्रीम ऑफ विच दिस ऑफ विच द वर्ल्ड इज मेड, इन दिस ग्रैंडियोज ड्रीम ऑफ विच द वर्ल्ड इज मेड। ड्रीम देखिए क्या तारे नक्षत्र अगर हम देखें, इन दिस गोल्ड डोम ऑन ए ब्लैक ड्रैगन बेस, शीर्ष पे तो गोल्ड है, स्वर्णिम स्वर्णिम है, मधुरम मधुरम है, यहां जब हम आते हैं तो यहां पर ब्लैक ड्रैगन हार्ट रिजिड ड्रैगन बेस। द कॉन्शियस फोर्स दैट एक्ट्स इन नेचर्स ब्रेस्ट, अब जिसको हम प्रकृति कहते हैं उसके अंदर भी जगन माता की दिव्य शक्ति छिपी हुई है। ये एकदम पूरा ऋग्वेद का अध्याय है जिसमें दसवें मंडल में ये भी है, जिसमें वो बताते हैं कि एक और दिति और अदिति दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, और दिति से दैत्य जन्मते हैं और अदिति से आदित्य जन्मते हैं। और वेदों में ऐसे कहा गया कि हमारे दो कवरिंग है, एक दिति का एक अदिति का, चारों तरफ से अदिति ने दिति के ऊपर चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है। आप कहीं से भी जाइए निकलेंगे, आपको अल्टीमेटली वो डिवाइन लाइट मिलेगी ही, एट द एंड ऑफ द टनल विच एवर डायरेक्शन यू गो देर इज लाइट। तो यहां पर ए डार्क रोब्ड लेबरर इन द कॉस्मिक स्कीम, प्रकृति के अंदर कोई लेबर कर रहा है, उस तरफ कौन है, कॉन्शियस फोर्स, वही प्रकृति को इम्पेल कर रही है, प्रकृति हमें इम्पेल कर रही है, जाओ वहां से जाके खिलौना खरीद ले, प्रकृति इम्पेल कर रही है। हमको लग रहा है हम जाते हैं फिर कहते हैं अरे ये तो बदहजमी हो गई, ये तो खिलौना टूट गया, है ना, बड़े लोगों ने ट्रेजिक गाने इस पर बनाए हुए हैं, मेरा सुंदर सपना टूट गया, अरे तब सत्य से साक्षात्कार होगा, दुखी क्यों हो रहे हो, लेकिन उस समय तो लगता है कि दुनिया टूट गई। तो यहां पर है इन दिस ए डार्क रोब्ड लेबरर इन द कॉस्मिक स्कीम कैरिंग क्ले इमेजेस ऑफ अनबॉर्न गॉड। देखिए लोग बोलते हैं सावित्री कठिन है, कितनी सुंदर है, आप दुर्गा पूजा या गणपति पूजा में आप क्या करते हो, आप कोई प्रतिमा लेके आते हो तो वो पहले कहाँ रहती है, क्ले इमेज के रूप में रहती है, वहाँ पे कोई बेच रहा है और फिर वहाँ से आप घर में लाते हैं, फिर आप उसकी स्थापना करते हैं, यानी उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है देवत्व का, लेकिन अभी वो क्ले इमेज के रूप में है। तो वैसे ही हम लोगों की अवस्था है, हम ही हैं वो डार्क रोब्ड लेबरर सोल जो अपने अंदर देवत्व को धारण किए है, सत्यवान है, लेकिन भटक रही है जंगलों में, मालूम नहीं है कि देवत्व हमारे अंदर है, जगह 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 हम पूछ रहे हैं थोड़ी लाइट है, श्री रामकृष्ण की कहानी है ना कि वो द्वार द्वार पे थोड़ी लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, लालटेन लेके व्यक्ति जा रहा है घरों में पूछ रहा है कि लाइट है क्यों, हमको अपना हुक्का सुलगाना है, कहते हैं मूर्ख ये क्या है तेरे हाथ में। तो उस तरह से हमारी अवस्था है कि जगह जगह जाके एक्सिक्यूट्रिक्स ऑफ द इनएविटेबल आइडिया हैम्पर्ड एनवलप्ड बाय द लूप्स ऑफ फेट पेशेंट ट्रस्टी ऑफ स्लो इटर्नल टाइम एब्जॉल्व्स फ्रॉम आर टू आर हर सीक्रेट चार्ज। किसके चार्ज में, अविद्यामय माया के। अब उनका तो ट्रेनिंग बड़ा स्कूल ऑफ सफरिंग तो बहुत ही खतरनाक है, उसमें जिस टीचर को आपको लगता है ये बहुत अच्छी टीचर है, मिस डिजायर प्रॉब्लम है उसमें, और जो टीचर लग रहा है आपको स्ट्रिक्ट है, वैल्यू बिल्कुल रिवर्स है वहां पे। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि वो आप सोल जो है स्ट्रगल कर रही है और उसको कौन नचा रहा है, नेचर, और आपको लग रहा है कि ये तो कहां ले जा रही, भटका रही है, इधर ले जा रही उधर ले जा रही है, डोंट वरी, भटकते भटकते ही रास्ता मिलता है, ये भटकने की कोई वो नहीं है, सलाह नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि कई बार जब हमको लगता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हम ज़्यादा भटके हुए होते हैं, पर हमको लगता नहीं है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हमको लगता है हम तो बड़े आई एम मिस्टर राइट। मिस्टर राइट को सही रास्ते पर लाना कहीं कठिन है। तो यहाँ पर उसी का है कि वो हर एक बदल रही है जिंदगी, वो नेचर ले जा रही है, यहाँ से वहाँ ले जा रही है, और किसके अधीन काम कर रही है, पेशेंट ट्रस्टी, उसको कहा गया है कि टाइम लो, अच्छे से करो। कई बार लोगों के, ये छोटी सी चीज बताता हूँ, कहते हैं मुझे 15 अगस्त को इनॉग्रेट करना है, 21 फरवरी को, भैया अब छोड़ दो ये चीज, छोड़ दो, वो लॉर्ड का बर्थडे और माता जी का बर्थडे उसको रहने दो। आपको जो दिन अच्छे से करो चीजें, फिर जो दिन अपने आप एक डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अनबॉर्न, वो दिन होगा लॉर्ड का आपके लिए दिन होगा, तो देखिए कितना अच्छा होगा। 365 दिन भगवान के हो जाएंगे। हर कोई 15 अगस्त तो उसमें इतने प्रोग्राम्स हो जाते हैं, किसी के घर का इनॉग्रेशन है, किसी का स्टडी सर्किल, क्यों? एवरी डे शुड बी द लॉर्ड्स डे, उनकी जॉय, ब्यूटी, डिलाइट। तो यहां पर एक ही लॉन्ग ट्रस्टी टाइम, टाइम के पास कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इसी दिन खत्म करनी है चीजें, वो तो अपने हिसाब से, वो कहता है खत्म होंगी जब खत्म करनी है, और वो दिन कौन सा है? कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो दिन भगवान पहली बार, डू वी नोट व्हेन वी रियली हैड द कंक्रीटेस्ट कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन? मेरे से पूछे, मैं भी भूल गया हूं, मैं पांडिचेरी आया हूं, वो दिन याद है, लेकिन जो मेरा कंक्रीटेस्ट कॉन्टैक्ट हुआ था, कोई पूछे वो डेट क्या थी, आई डोंट रिमेम्बर, वो डेफिनेटली वन ऑफ दीज स्पेशल डेट्स नहीं थी, वो आपका है। कई बार लोग यहाँ के कंटेक्स्ट में ये मनाते थे कि जिस दिन हम यहाँ पे आए हैं पहली बार वो हमारा बर्थडे है, कई लोग ऐसे करते हैं आश्रम में कि जिस दिन हम आए, जिस दिन बा का दर्शन हुआ पहली बार, वो हमारा बर्थडे है। तो कौन सा दिन होगा मालूम नहीं, तो पेशेंट ट्रस्टी टाइम, टाइम को कोई जल्दबाजी नहीं कि इस दिन मुझे फिनिश करना है, ये हेस्ट नहीं है उसके अंदर, लेकिन जब फिनिश करना है तो फिनिश करना है, मतलब फिर ये नहीं रहेगा कि ये चीज अधूरी रह गई, ये वो बिल्कुल पक्का काम होगा। ऑल शी फोरसीज इन मास्ट इम्पेरेटिव डेप्थ्स। अब ये शी कौन है? नेचर है, प्रकृति है, हालांकि वो अज्ञान में है पर उसके भी हृदय में छवि वही है। फर्क ये कि अज्ञान में बैंडेज्ड है उसको, लेकिन याद है कि वहां से आई हूं मैं। तो कौन याद दिलाता है, कसोटता है? परा प्रकृति, प्रकृति के पीछे परा प्रकृति, माया के पीछे महामाया। तो उसको यहां उसका वर्णन है, ऑल सी फोर सीज इन मास्ट इम्पेरेटिव डेप्थ। इम्पेरेटिव देखिए, निश्चितता से वही स्वप्न है उसका। द डम्ब इंटेंशन ऑफ द अनकॉन्शियस गल्व्स आंसर्स टू ए विल दैट सीज अपॉन द हाइट्स। अब वो यहां पर आके वो जो विल छिप गई है, वो ओरिजिनल विल को नहीं जानती, फिर भी उसी का प्रत्युत्तर दे रही है। और इसका बड़ा सिंपल उदाहरण है, अब देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी कम्युनिज्म में एक धारा आई कि हम जड़ तत्व के आधार पर दुनिया सब समान हो जाएं, एक हो जाएं। अब क्या है वो? अज्ञान में खोज तो वही है। जब आप कहते हो मैं भगवान में नहीं मानता, मैं खुद को ही भगवान मानते हो, खोज तो वही है। जब आप ये कहते हो वो व्यक्ति मेरा भगवान है, खोज तो वही है। आप अज्ञान में ढूंढ परफेक्शन ही रह रहे हो। इसीलिए जब लोग, जब विवाह होता है या उनको लगता है कि मिस्टर परफेक्ट हैं, मिस परफेक्ट हैं, वास्तव में वो भगवान को खोज रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्ले इमेज, अभी उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं। तो ये समस्या है कि हम यहां पर भी अज्ञान में भी विल वही है, लेकिन वो जानती नहीं कि कैसे। तो वो समझती है कि अगर मेरे पास बाहरी संपदा आ जाएगी तो अंदर की भी संपदा आ जाएगी, बट ढूंढ वही रही है। The dumb intention of the unconscious gulfs answers to a will that sees upon the heights. And the evolving words first syllable, इसकी बात हुई थी पिछली बार, ओम, ओम का जो है आ ओम आ, तो आ यानी सृष्टि का प्रारंभ। अब प्रॉब्लम होती, कई लोगों को यह समस्या होती है, कहते हैं ये भगवान ने शुरू ही क्यों की, फर्स्ट सिलेबल बोलने की क्या जरूरत थी, अब आ से सृष्टि शुरू हो गई। तो हाँ, यहां वो है कि एंड द इवॉल्विंग वर्ड्स फर्स्ट सिलेबल, लेकिन उसमें अभी और बहुत कुछ आना है। पॉन्डरस, पॉन्डरस क्यों? क्योंकि पता नहीं क्यों है, मैं क्यों हूं, यही तो समस्या है ना। मैं होता तो क्या होता, एक कवि ने ऐसे लिखा है कि होने से ही प्रॉब्लम हो गई सारी। तो ponderous, brute sensed, और अगर हम देखते हैं संसार को तो लगता है ये क्या है, कहाँ है भगवान? contains its luminous glows. लेकिन उसी के अंदर, आरंभ के ही अंदर उसका अंत छिपा है. अंत क्या है या परिसमाप्ति क्या है? ये अंधकार के अंदर वो प्रारंभ हो रही है कहानी, लेकिन उसका अंत क्या है? चारों तरफ प्रकाश का घेरा है. तो अंधकार में जाने की क्या जरूरत थी? तैयार होने के लिए प्रकाश को अपने अंदर उन्मीलित करके हम पिघल ना जाए, क्योंकि प्रचंड प्रकाश है. तो अंधकार की यात्रा तैयारी है, लेकिन ये बात बाद में पता चलती है. प्राइवी टू ए समिट विक्ट्रीज वास्ट डिसेंट एंड द पोटेंट ऑफ द सोल्स इमेंस सरप्राइज. वास्ट डिसेंट क्या है? भगवान ही जब उनकी चेतना शक्ति इस पृथ्वी पर उतरी, अंधकार में समा गई, तो उस चीज को कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारी सोल जानती है, क्योंकि वो भी वहीं से आई है. एंड द पोर्टेंट ऑफ द सोल्स इमेंस सरप्राइज, उसी के आधार पर वो एक एक करके एक एक स्तर पे उठती चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी जो स्टेप्स हैं क्रिएशन की, जिनके थ्रू सृष्टि आई है यहाँ पर, वो सारी स्टेप्स वैसी की वैसी हैं, तो उसे चढ़ करके वो चली जाती है. अब आ रही है बहुत अद्भुत पैसेज, बहुत ही सुंदर है ये सारा, यहीं का वर्णन हो रहा है. तो यहां पर हम क्या देखते हैं? हर चीज अलग अलग है, क्योंकि हमारी यहां पर विभक्त दृष्टि है, भेद दृष्टि है. ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, इत्यादि. अब उसमें जितना अलग करते चले जाओ, उतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे. ऑल हियर, अब देखिए सीक्रेट नॉलेज है. तो शेरविंद हमको वो रहस्य बता रहे हैं जो हम साधारणतया अपनी इंद्रियों से नहीं देख पाते, इसलिए वो सीक्रेट नॉलेज है. ऑल हियर वेयर ईच थिंग सीम्स इट्स लोनली सेल्फ. सब अकेले घूम रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है? आर फिगर्स ऑफ द सोल ट्रांसेंडेंट वन. परब्रह्म ही है जो उन सब में निवास कर रहा है, परब्रह्म ही है जो ये सब बन गया है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर्मूलाज एवर गिवेन. लोग कहते हैं ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, लुक एट इट. हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि दाउ आर्ट गॉड, मतलब इससे बड़ा फॉर्मूला कोई रिलीजन दे नहीं सकता आपको. और लॉजिकल है, क्योंकि अगर सृष्टि का सोर्स एक है तो हर चीज के अंदर आएगा. इट्स वेरी लॉजिकल. तो यहां पर उसकी बात, ऑल हियर वेयर ईच थिंग सीम्स इट्स लोनली सेल्फ, दिख रही है अलग अलग, आर फिगर्स ऑफ द सोल ट्रांसेंडेंट वन. ओनली बाई हिम दे आर, हिज ब्रेथ इज देयर लाइफ. एन अनसीन प्रेजेंस मोल्ड्स द ऑब्लिवियस क्ले. अगर वो ना हो तो अस्तित्व समाप्त हो जाए. तो कई बार पैराडॉक्सिकल आंसर्स होते हैं ना, कोई कहता है भगवान नहीं है, तो ये मैं कहता हूँ ये पैराडॉक्सिकल है. क्यों पैराडॉक्सिकल है? अगर भगवान नहीं है तो है का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और है का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो तुम्हारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है. इट इज एग्जिस्ट. एग्जिस्टेंस अगर है तो एग्जिस्टेंस का कोई आधार है, एज सिंपल एज दैट. तो वहां पर हम लोग परम तत्व सोल एग्जिस्टेंट की बात करते हैं. तो ओनली बाई हिम दे आर, हम सब अगर हैं तो केवल उस परम सुप्रीम एग्जिस्टेंस के कारण है, और उन्हीं की श्वास से हमारा जीवन चल रहा है. देखिए केन उपनिषद में ये लाइन है ना कि प्राण, वही प्राण से ये प्राण चलता है, और माँ की भी ये लाइन है, ओ दाउ हू आर द लाइट ऑफ माई इंटेलिजेंस द लाइफ ऑफ माई लाइफ. जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा जीवन में. लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने सारे प्राणायाम करते हैं, प्राण की रक्षा ये तो क्या क्या नहीं करते हैं. अब गोपियों का तो फॉर्मूला बहुत सिंपल था. गोपियों से पूछा उद्धव ने, तुम लोग प्राणायाम करते हो? बोली नहीं. ध्यान करते हो? नहीं. तभी तो मूर्ख हो तुम लोग, मूर्ख ही रहोगे. तुम कृष्ण को नहीं जानते, वो तो एक अवतार हैं, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, पर तुम उनके पर ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते. वो घबरा गई, वो करना क्या होगा. प्राणायाम करो, ध्यान करो. कहते हैं हाँ, एक उठाती है हाथ, कहती एक प्रश्न है. क्या प्रश्न है? कहते एक प्राण है हमारे अंदर, हमने कृष्ण को दे दिया है, वो एक ध्यान है वो कृष्ण में लगा रहता है, अब हम उसको वापस लाएं करें, दैट इज सुप्रीम प्राणायाम। आप प्राण को साध नहीं रहे हो, जोड़ रहे हो असाध्य के साथ, आप ध्यान को साध नहीं रहे हो, ध्यान को जोड़ रहे हो उनके साथ, तो दैट इज दी सुप्रीम। तो वहां पर बताएं हिज ब्रेथ, उनकी श्वास से, और सच बात है यूनिवर्स को देखिए एक्सपैंड करता जा रहा है, अभी तक कितने बिलियंस ट्रिलियन ईयर होंगे, शायद बिलियंस तो कहते हैं लेकिन लेटेस्ट डिस्कवरी है कि इट इज स्टिल एक्सपैंडिंग ऑन द फार एज, एनीवेज एन अनसीन प्रेजेंस। और इसीलिए चूंकि वो हम सबके अंदर व्याप्त है, कण कण में समाया है, इसीलिए उनकी उपस्थिति मात्र से ये जड़ तत्व बदल रहा है। ये कई बार बचपन में मुझे ये प्रश्न होता था कि अगर कार्मिक थ्योरी सही है तो चांस नहीं है किसी का, जीवन का सत्य है ना, हम कितना भी कह लें कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, पर आप देखेंगे अगर अंधकार, चलो हम होंगे धर्मात्मा, प्रिमिटिव मैन क्या था, मार रहे थे, कूट रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे वहां तो हम, उसके पहले पशु, वहां तो कर्मिक थ्योरी अप्लाई भी नहीं कर रही है, लेकिन कोई तो है अंदर बाय हिज प्रेजेंस, दृष्टि मात्र से वो इस सृष्टि को बदल रहा है, दृष्टि मात्र से, तो है ना स्वामी शरणानंद की, कई लोग कहते ना आपने विजन देखा, आपने माता जी को देखा, पूछते हैं कई बार, मेरे से भी पूछते हैं आपने माता जी को देखा, तो मैं कहता हूँ माता जी ने मुझे देख लिया है, ये निश्चित है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्या देखेंगे हम लोग, देखूं देखा है कई लोगों को जिन्होंने माता जी को देखा है, क्या देखते हैं हम लोग, अच्छा एक ह्यूमन बीइंग, कई लिखते हैं इस तरह से लोग, माता जी की दृष्टि पड़ गई बस, प्रेजेंस मोल्ड्स द ऑब्लिवियस क्ले, ए प्लेमेट, आप देखिए ए प्लेमेट इन द माइटी मदर्स गेम, वो महाशक्ति आई है यहां पर सृष्टि करने, तो उनके साथ खेलने के लिए कौन आए हैं, स्वयं ईश्वर आए, दोनों यहां पर आए हैं, ए प्लेमेट इन द माइटी मदर्स गेम, वन केम अपॉन द ड्यूबियस वर्लिंग ग्लोब टू हाइड फ्रॉम हर परस्यूट इन फोर्स एंड फॉर्म। ये वास्तव में मनु शत्रुपा की कहानी एक्चुअली दी हुई है हमारे उसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें वो बार बार, ये कई अलग अलग ढंग से भी आती है, जहाँ वो हाइड करते हैं, शत्रुपा उनके लिए फॉर्म्स बनाती है, और वो खेल ये है कि तुम मुझे ढूंढो, तो ढूंढ लेती है, तो फिर नए नए फॉर्म आते हैं, फिर खूब तपस्या करते हैं, अंत में ये कहते हैं कि हमको राम जी प्रकट होते हैं, विष्णु भगवान राम जी के रूप में, कहते हैं आप संतान के रूप में हमारे यहाँ आ जाइए। ये बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी है, गॉड्स बर्थ इन मैटर अल्टीमेटली। तो फोर्स जो है प्रकृति फॉर्म्स बनाती है, तैतृय उपनिषद में भी कहानी की अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए, तो देवताओं से पूछा गया जाओगे, कहते नहीं ये हमारे अनुकूल नहीं है, अंत में जब मनुष्य बना तो उन्होंने कहा ये है इसमें हम जा सकते हैं, अब पता नहीं वो खुश हैं कि नहीं आ करके बहुत सारे मनुष्य बिना सिंह, जैसे राजा भर्तरी ने कहा ना योगी, बिना सिंह और बिना पूंछ वाले पशु देखे मैंने जो घास भी नहीं खाते थे आप अपनी पर ये है कि उन्होंने गढ़ा है, सच बात है कि पशु मानव से यहां तक लाना देवताओं का काम है, अब हम सुप्रामेंटल की ओर जा रहे हैं, कितनी मेहनत की होगी कि हमारे अंदर थोड़े सुंदर विचार, शुभ्र विचार, उच्च भावनाएं, नोबिलिटी, ये सब तो काम हुआ है ना उनका, अद्भुत काम हुआ है, तो वो सब किसके आदेश पर, ईश्वर, क्योंकि वो ईश्वर हैं, वो सब साथ में काम कर रहे हैं, भगवान तो छिपे हुए हैं, पहले ये लोग काम कर रहे हैं। ए सीक्रेट स्पिरिट इन द इनकॉन्शियंट स्लीप, ए शेपलेस एनर्जी, ए वॉइसलेस वर्ड, ही वॉज हियर बिफोर द एलिमेंट्स कुड इमर्ज, पहले आके वो छुप गए थे। ओरिजिनल क्लेमेंट ऑफ द थ्रोन, दस शेल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट इज थ्रोन, अब पूरी सृष्टि लगी हुई है उनके लिए, सिंहासन बनाने के लिए, राजभवन बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए। कितनी अद्भुत सी चीज है। अगर हम अपने जीवन को ऐसे समझने की चेष्टा करें कि एक मंदिर है जो इन द मेकिंग है, और जिनका मंदिर है वो यहीं पर हैं अंदर में, लेकिन अभी वो दृश्य नहीं हुए हैं, अदृश्य रूप में वही। अब ये सच है कि अब मंदिर बनता है, एक्चुअल मंदिर के बनने में, तो आप किसी से पूछेंगे कि भैया क्या बन रहा है, तो वो कहेगा कि जगन्नाथ जी का मंदिर बन रहा है, या जहाँ का भी दुर्गा जी का मंदिर बन रहा है। तो आप पूछोगे कहाँ है जगन्नाथ, कहेंगे अभी आए नहीं हैं। लेकिन सबके अंदर कौन काम कर रहे हैं, जगन्नाथ। प्रेरणा किसकी है, जगन्नाथ। ध्येय क्या है, जगन्नाथ। तो देखा जाए तो जगन्नाथ से भरा हुआ है सबका मन मस्तिष्क, और एक्चुअल जगन्नाथ की कहानी में इसी प्रकार की चीज है। बना वही है जो अनसीन प्रेजेंस के रूप में है, अंत में जब बन के मूर्ति विराजती है तो वही अभी इट इज ए टेम्पल इन द मेकिंग। तो वो कैसे प्रारंभ होता है, शेपलेस एनर्जी। ऑरोविल कैसे प्रारंभ हुआ था, इसी तरह रेड सॉइल जो बैरन थी, ये तो एक लिविंग चमत्कार है जिसके अंदर कुछ भी नहीं उगेगा। वहाँ पर लोगों ने गड्ढा खोदा, उस समय कोई पूछते क्या कर रहे हो, कहते कि भी माता जी ने कहा है कि हमको यहाँ एक सिटी द वर्ल्ड नीड्स ये सब बनाना है, तो लोग शायद कहते होंगे मूर्ख लोग, देखिए बना ही दिया। ये होती है, यहाँ भी ऐसी हुआ है जो हमारा टेनिस ग्राउंड है। बिफोर देयर वॉज लाइट ऑफ माइंड और लाइफ कुड ब्रीद, ये नहीं है कि अब भगवान जागे हैं या चेतना ब्रेन आने के बाद, वो सदैव रहे हैं। और ये वन कैन सी द प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी इवन इन स्टोन। और कई तो स्टोन्स को देखे आश्चर्य होता है कि उनके जो सौंदर्य की शेप, और कैसे आप पूछो, शंख इतने सारे मिलते हैं ना, ये कैसे बने, ये सीपी शंख रैंडमली उनके ऊपर समुद्र आघात कर रहा है, उन बेचारों को पता भी नहीं है कि हमारी वैल्यू क्या है। आघात करते करते उसके अंदर एक, कईयों के अंदर मॉलस्क भी रहा है, कईयों के अंदर नहीं रहा है। हाँ देखिए निकलते हैं अंत में कितने सुंदर, माने जैसे अंधकार से एक्सट्रैक्ट करके उनको लाया गया, लेकिन वो एनर्जी जो काम कर रही है वो तो एकदम मैकेनिकल एनर्जी, समुद्र का आघात लग रहा है। समुद्र की कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है, वो तो अपनी मन मौजी मस्ती से। एक आदमी को अगर कार्व करके बनाना हो तो उसको कठिनाई होगी। आप पीकॉक के फेदर्स को देखिए, बहुत पेंटिंग की है लोगों ने, लेकिन जो पीकॉक के अंदर जो एक नेचुरल चीज है वो कहां से आती है। तो यहां पर उसका कि अनकॉन्शियस एनर्जी वॉइड में काम करते करते देखो क्या घटित कर रही है। एकम्प्लिश, अब कितना सुंदर वर्ड है, एकम्प्लिश ऑफ अर कॉस्मिक यूज प्रिटेंस। यहां पर इल्यूजन इस सेंस में है, माया प्रिटेंस है कि नहीं है। प्रिटेंस क्यों है, प्रिटेंस ये कि कैसे ये एटम के आधार पर ये एकदम जड़ जगत बना और ब्रीद करने वाला पुतला, एक दृष्टि से देखें तो लगता है कि ये तो कैसे है, पर है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एकम्प्लिश, एकम्प्लिश कौन है, जो भागीदार है, चोरी में आपके भागीदार है, तो वो है एकम्प्लिश। कौन है इसका, ईश्वर है, और इसीलिए यह सत्य है। वो बाद में बताते हैं, यदि प्रकृति के अंदर ईश्वर छिपा नहीं रहता तो फिर आप कह सकते हो कि ये, लेकिन वो छिपा है, परब्रह्म इसके अंदर व्याप्त है। हिज सेम्ब्लेंसेज ही टर्न्स टू रियल शेप्स एंड मेक्स द सिंबल इक्वल विद द ट्रूथ। उन्हीं की प्रतिकृति है प्रकृति, प्रयास कर रही है। अगर आप एक दृष्टि से देखें, सावित्री की एक लाइन है, स्पिरिचुअल थॉट इज क्रैम्प्ड इन मैटर्स बुक्स। आपको जड़ जगत की हर चीज के अंदर, आप देखिए एटम, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज है, नहीं तीनों के प्लानिंग एक तरह से की गई है। प्लानिंग क्या है, केंद्र है, एक केंद्र है, वन, उस केंद्र के अंदर दो हैं और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ऊर्जा पार्टिकल की। अब आप सोलर सिस्टम में चले जाइए, वहां भी आपको ये दिखाई देगा, सन के अंदर हीट और लाइट दोनों की संभावना, पावर एंड नॉलेज। आप गैलेक्सीज में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, हर जीवन के अंदर, एक सेल के अंदर आपको दिखाई देगा, न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ वही ओरिजिनल प्लान। तो उसी को आधार बना करके अलग अलग ढंग से प्रकृति बना रही है रूप, नाम रूप. ही गिव्स टू हिज टाइमलेस थॉट्स ए फॉर्म इन टाइम. एक जगह माता जी कहती हैं, ये विभूति योग का सार है, एवरीथिंग इन क्रिएशन इज ए थॉट ऑफ गॉड. जब श्री कृष्ण बताते हैं विभूति योग में कि नागों में मैं वासुकी हूं, सर्पों में मैं अनंत हूं, और मैं स्पेस भी हूं, टाइम भी हूं, और अलग अलग उसमें बताते हैं पशुओं में मैं लायन हूं, सिंह हूं, तो ये सारे जो देखते हैं आप कि उसके अंदर कोई एक पशु के अंदर एक डिवाइन क्वालिटी का धीरे धीरे एक उत्सर्ग हो रहा है, और वो जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वो भी एक भगवान की अभिव्यक्ति है. आप कभी देखिए लायन को ध्यान से, मतलब रियल में भी जा सकते, मैंने देखा है, बड़े अच्छे होते हैं. मतलब आप अफ्रीका की बात है सफारी में, और कितने पास से, जैसे यहाँ से कुछ फीट, 7-8-10 फीट, मैंने कुछ भी करो, गाड़ी रोक के, और पुरुष सिंह का एक परिवार, एक सिंह, एक सिंगनी और छोटे छोटे शावक, उसको देख के ना लगता है, शक्ति इसी को कहते हैं, क्वाइट पावर, कॉन्फिडेंट. वो देख रहा है हम लोगों को, फिर उसके बाद उसको कोई लेना देना नहीं है, जाओ तुम अपने रास्ते. सच में लगता है राजा यही है. कोबरा को देख लीजिए, वो कुछ नहीं करेगा, आप वो बस खड़ा हो के आप देखो, डोंट मेस विद मी, यही कहता है. वो उन सांपों की तरह नहीं है जो इधर चिप चिपके से नीचे आके काट लेते हैं, वैसा नहीं है. राजा है, नाग देवता है, तो उसका अपना एक स्टाइल है, एटीट्यूड है. ऐसे नहीं, तो आप किसी भी चीज, पर्वतों में मैं मेरू सुमेरू, अब सुमेरू कहाँ है, सुमेरू तो अंदर है. अब साइंटिस्ट तो आप बताते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट से बड़े पहाड़ अंदर हैं आपके ओशियन के, ये तो अंदर का ओशियन है क्योंकि इसको तो चर्निंग के लिए यूज किया गया था. तो हर चीज में जो एक्सेप्शनल, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड है, तो हर चीज के अंदर भगवान का कोई थॉट है जो प्रकट हो रहा है. हम लोगों के अंदर वो स्वभाव और स्वधर्म के रूप में आता है, तो वी हैव टू ऑल्सो डिस्कवर इट एंड एक्सप्रेस इट. ही गिव्स टू हिज टाइमलेस थॉट्स ए फॉर्म इन टाइम. ही इज द सब्सटेंस, ही द सेल्फ ऑफ थिंग्स. भगवान ने बनाया, कैसे बनाया, मिट्टी कहां से आई, उन्हीं के अंदर से आया, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था बेचारों के पास. अपने ही अंदर से सब्सटेंस भी आया, कैसे आई ये सब बताते हैं अलग अलग जगह पर, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे. और उसी के अंदर वो विराजमान भी हो गए सेल्फ बन के, तो मिट्टी भी आ रही है वहीं से, उसमें विद्यमान भी हैं. अब देखिए दुर्गा की मूर्ति में यही तो चीज है, आप कितने जगहों से मिट्टी लेते हो, अंत में वो मिट्टी ही कहां से आई, वही दुर्गा जी बन जाती हैं, और उसके अंदर दुर्गा जी अनुप्राणित प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है. तो उन्हीं की मिट्टी और उन्हीं का सब्सटेंस, लेकिन ये जो सब्सटेंस ये बना है, इस भगवान का ओरिजिनल सब्सटेंस, उसको सुप्रामेंटल सब्सटेंस, जो धीरे 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 उसको वो कॉन्सेंट्रेट करते हुए, क्योंकि उसको हम नहीं सहन कर पाएंगे, तो धीरे धीरे उसी सब्सटेंस को आप डाइल्यूट करते हो, लेकिन उसकी जो महिमा है उसके अंदर अभी भी व्याप्त है. उन्हीं ने अपने अंदर से उसी लाइट को आप डाइल्यूट करते 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 यहां पर वो इतनी डाइल्यूटेड हो जाती है, परंतु वही ओरिजिनल प्रकाश है, वही सब्सटेंस है, और सेल्फ तो है ही. शी हैज फोर्ज्ड फ्रॉम हिम हर वर्क्स ऑफ स्किल एंड माइट. सब कुछ वहीं से आ रहा है, प्रेरणा आ रही है, उन्हीं से सिंबल है. वही पुरुष सूक्त में है कि भगवान ने अपने ही शरीर को, तो उसमें कहते हैं ना, उनके रोम रोम से वनस्पतियां बनी, वृक्ष बने, नासिका से ये बना, कान से ये बना. सो इफ यू लुक एट इट लाइक दैट, अब इंडिया का भी, इंडिया में तो पूरी आप माता सती के सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर लो, भरत का मैप आ जाएगा. तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि हिंगलाज माता इधर है, POK में भी हैं. तो हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने, क्योंकि दैट्स हाउ इट इज, देयर इज एन ऑकल्ट फॉर्मेशन. तो वो सारी चीजें, शी रैप्स हिम इन द मैजिक ऑफ हर मूड्स, क्या लाइन है, एंड मेक्स ऑफ हिज मेरियड ट्रूथ्स हर काउंटलेस ड्रीम्स. तो अब वो तो परमेश्वर हैं, अब यहाँ आ गए खेल खेलने के लिए. मैजिक ऑफ हर मूड्स, तो प्रकृति कहती है थोड़ा बच्चा बनेगी, ठीक है. अब वो नचा रहे हैं, ये तो है ना वो भजन में, देख सखी मोहे अचरज आवे, ब्रह्म अनादि अनंत अगोचर, नेति नेति जाको श्रुति गावे, सो ब्रिजराज आज जननी की अंगुरी पकड़ के चलना सिखावे. ये क्या है? वो जो जिनके जाके भय डोलत नब धरणी, जिनकी उपस्थिति मात्र से सारी सृष्टि घूम रही है. देवता भी कहते हैं ये चक्कर क्या है, प्रकृति के साथ उनका खेल है. मैं बच्चा बच्चा बनेंगे, हाँ बन जाऊंगा मैं एकदम विवश, नवजात शिशु की तरह बन जाऊंगा, आपके वोम्ब में बच्चा बन जाऊंगा. ये खेल है, इसीलिए कहा है ना ये खेल उनका. तो ये खेल का वो पार्ट है. शी रैप्स हिम इन द मैजिक ऑफ हर मूड्स एंड मेक्स ऑफ हिज मिरियड ट्रूथ्स हर काउंटलेस ड्रीम्स. उनके अंदर जो अनंत संभावनाएं हैं भगवान के अंदर, वो सारी संभावनाओं को प्रकृति प्रकट करती है. भगवान के ही अंदर उनको अपोज करने की भी संभावना है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. ये दिव्य जीवन में श्री अरविंद बताते हैं. तो प्रकृति ऐसी भी चीजें प्रकट करती हैं जो लगता है कि ओरिजिनल प्लान को अपोज कर रही हैं. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्ले. वाई इट इज देयर, वो अन्यत्र इसकी बात हो चुकी है. वो सावित्री में भी आएगा, सावित्री में सब कुछ है. द मास्टर ऑफ बीइंग हैज कम डाउन टू हर, एन इमॉर्टल चाइल्ड बॉर्न इन द फ्यूजिटिव ईयर. देखिए वो जो स्वामी है प्रकृति का, उनका शिशु बन के आ गया है, चैत्य सत्ता के रूप में, भ्रूण अवस्था में है. चैत्य सत्ता तो बाद में, चैत्य स्फुलिंग है वो, और प्रकृति उसको जहां जहां जा रही है लेके जा रही है, गर्भ के अंदर ये इमेज है, फिर पालने के अंदर. तो ऐसे क्रेडिल से बात आती है ना, कि माता जी ने ओरिजिनली कहा था आश्रम इज द क्रेडिल ऑफ द न्यू वर्ल्ड, फिर बाद में ये ऑरोविल में भी वही ड्रीम कॉपी पेस्ट हो गया. तो अब ये हुआ कि भाई अब क्रेडिल ऑफ द न्यू वर्ल्ड से लोगों को लगा कि हम न्यू वर्ल्ड नहीं भैया, क्रेडिल है पालने में हो, पहले चलना सीखो, अभी पालना ही है. तो वही देखिए, अब देखिए भगवान का मैजिक, कि एक छोटे से बीज के अंदर जो अपना भ्रूण का जो बीज है उसमें कौन समाया हुआ है. कोई कल्पना कर सकता है कि इसके अंदर महर्षि वाल्मीकि, श्री कृष्ण, ना जाने कौन कौन से, शिवाजी महाराज, ये सब उसके अंदर उस बीज में छिपे हुए हैं. कौन पोषित कर रहा था बीज को? प्रकृति. अज्ञान में भी जब हम पोषित हो रहे हैं, जा उधर ही रहे. सो द मास्टर ऑफ बीइंग हैज कम डाउन टू हर, एन इमॉर्टल चाइल्ड बॉर्न इन द फ्यूजिटिव ईयर्स. सोचो जब स्वर्णलता देवी को, श्री अरविंद को उन्होंने धारण किया होगा, क्या उन्होंने सोचा होगा. तो कोई किसी ने पूछा भी कि उनका मस्तिष्क, शी लॉस्ट हर माइंड, का साधारण है क्या भगवान को धारण करना अपने वोम में. देवकी और वासुदेव के साथ भी यही हुआ था, दे लॉस्ट देयर माइंड, दे कंप्लीटली फॉरगॉट, क्योंकि इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू कैरी दैट लाइट इन द वोम्ब. इन ऑब्जेक्ट्स रॉट इन द पर्सन सी कंसीव्स, हर चीज के अंदर एक एक चीज जो बना रही है, पहाड़, नदी, नाले, जंगल, जड़ जगत, प्राणवय जगत और मनुष्य, सबके अंदर वो कंसेप्शन वही है, वही इमेज वो धारण करके जगह जगह बना रही है कि तुम आ जाओ, इसमें प्रकट हो जाओ, उसमें प्रकट हो जाओ. ड्रीमिंग शी चेजेस हर आइडिया ऑफ हिम एंड कैचेज हियर ए लुक देयर ए जस्ट. कितनी मतलब पोइटिक लाइन्स हैं कहीं पर ये. इसीलिए मनुष्य कभी भी कितना भी चाह ले, कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट से संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं पर उसको भगवान, वो ढूंढ तो भगवान को रहा है ना, तो उसको कहीं भगवान की ये छवि नजर आती है, कहीं वो नजर आती है, कहीं कहीं और. जब तक वो भगवान को नहीं पालेगा तब तक वो असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि ढूंढ वो भगवान को रहा है. और प्रकृति सबके अंदर कोई ना कोई दैवी गुण, दिव्यता का कोई स्पर्श कहीं ना कहीं बना देती है, क्योंकि वो वही कर रही है. एवर ही रिपीट्स इन देम हिज सीजलेस बर्थ्स, हर एक ऑब्जेक्ट में वो भगवान की किसी ना किसी प्रतिकृति छाया को प्रकट करने की चेष्टा कर रही है। अब अद्भुत बात आ रही है और भी उससे भी आगे ले जा रहे हैं। श्री अरविंद खेल को ना कहते हैं लेवल वन, अब लेवल टू तो ये हमने देखा प्रकृति और ईश्वर का खेल क्या क्या कर रही हैं, अब लेवल थ्री पर जा रही है हमारी चेतना को, अंडरस्टैंडिंग को, ज्ञान को, वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड, ये भेद दृष्टि क्यों रखते हो? ही इज द विजन एंड ही इज द सीयर, ही इज हिमसेल्फ द एक्टर एंड द एक्ट, ही इज हिमसेल्फ द नोअर एंड द नोन, ही इज हिमसेल्फ द ड्रीमर एंड द ड्रीम। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, दोस्ती, राशि प्रोडक्शन वालों ने बनाई थी, और पहली फिल्म जिसमें माता जी का चित्र डेडिकेटेड टू द मदर ऑफ श्री अरविंदो आश्रम पांडिचेरी, और उसमें एक गीत लिखा, देखिए इंस्पायर्ड गाना होगा, मुझे लगता है शायद सावित्री कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने पढ़ी होगी, गीतकार ने, क्या कहते हैं, नयन भी तू, दरस भी तू, नयन भी तू, और फिर वो कहता है कष्ट भी तू है और चैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू। कई बार लोग कहते हैं ना कि भगवान ने मुझे कष्ट, अच्छा तुमको अगर लगता है भगवान ने कष्ट दिया है तो चैन भी तुम वहीं पाओगे कहीं और नहीं पाओगे। सो दरस भी तू, नयन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, सब कुछ तू है। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, बड़ा बहुत सुंदर गाना है, देख तुझे सब है पता, तो वो दैट्स द ब्यूटी, ये है अल्टीमेट इंडियन थॉट, अल्टीमेट वेदांत, कि वो सृष्टि करता भी है और सृष्टि भी वही है, ये जो सबसे अल्टीमेट थॉट है ये। ईश उपनिषद में आत्मे वा भूत विजानता, जो जानता है कि वही सब कुछ बन गया है उसको भय नहीं होता है, वो किस चीज से दूर भागेगा, कहाँ वो कहेगा ये अछूत है, ये नहीं, यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ वो नहीं है, कैसे कह सकता है वो, ये संभव ही नहीं है उसके लिए। अब इसको उसके फाइनल अंडरस्टैंडिंग में ले जाते हैं, तो वही सृष्टिकर्ता भी है, सृष्टि भी है, वही दृष्टि भी है, और वही देखने वाला भी है, वही खिलाड़ी भी है, ऐसो चतुर खिलाड़ी, होली के दिन सब जगह वही खेल रहा है। ही इज हिमसेल्फ द एक्टर एंड द एक्ट, दृश्य भी वही है और खिलाड़ी भी वही है, खेल भी वही है, वही ये है, वही ज्ञाता है, वही स्वप्न देख रहा है और स्वप्न भी वही है। इसका क्या, व्हाट कैन वन टॉक अबाउट इट एक्सेप्ट दैट ऑल इज ही। जिस दिन ये बात समझ आते हैं सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी इसलिए होती कि हमको ये है वो होना है, ऐसे है वैसे बनना है, जिस दिन ये पता चल जाता है। एक बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, जैन लोगों का अलग तरीका होता है ना तो एक मास्टर था, वो कुछ बोलता नहीं था, उसके मंडली में जब लोग आते थे तो केवल कोई प्रवचन नहीं देता था, केवल उंगली उठा देता था। अब आप तो एक डिसाइपल ने उनको इमिटेट करना शुरू किया, तो वो भी जब कोई कुछ पूछे तो अब देखिए इमिटेशन बड़ी डेंजरस चीज होती है, तो वो भी सबसे उंगली उठा के बात कोई पूछे तो एक दिन मास्टर ने उससे कुछ पूछा तो उसने उंगली उठा दी, मास्टर ने तलवार लेके उसकी उंगली काट दी। अब वो भागा चीखता हुआ, मास्टर, चीखता हुआ भागा, मास्टर उसके पीछे भागे तो रुक गया, डिसेबल रुक के अपनी उंगली को दिखा रहा है ये क्या किया, तो मास्टर ने उंगली उठाई, तब कहते उसको एनलाइटनमेंट हुआ, तब एनलाइटनमेंट हुआ कि ये केवल उंगली नहीं, हर अवस्था में वही है, अभी वो नहीं जानता इस चीज को, वो इमिटेट कर रहा है। जिस दिन वो जान गया कि कटी उंगली और जुड़ी उंगली वही है, तो कहते हैं कि उनका तरीका ये था कि जब उसकी उंगली काट दी और वो रो रहा है मास्टर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तो उत्तर में मास्टर ने अपनी उंगली उठा दी, तो उसके अंदर उसी समय एनलाइटनमेंट हुआ। देखिए वो खैर ये बड़ा ड्रास्टिक तरीका है, अच्छा है, श्री अरविंद ऐसा नहीं करते हैं, वो उचित भी नहीं है, क्योंकि हमको संसार वो संपूर्णता में प्रवेश करना है. देर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मैनी वर्ल्ड. सब कह रहे भगवान अब देखिए आप ये हम लोगों को शब्दों के जाल में अगर अभी कह रहे हो पुरुष और प्रकृति है फिर आप बीच में कह रहे हो कि एक ही है कुछ एकदम डेफिनेटिव बताओ ये. तो कहते हैं देर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मैनी वर्ल्ड. एक ही है जो पुरुष प्रकृति के रूप में प्रकट होता है खेल के लिए. अब देखिए पूरे सांख्य को उन्होंने एक नई दिशा दे दी. दो नहीं है एक ही है परंतु वो दो बन गया. अब इसको बड़े सिंपल ढंग से हम लोग समझ सकते हैं और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है. अगर मान लो कोई कविता मैंने लिखी तो क्या मैं और कविता दो अलग हैं? अब देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी आपको उत्तर देने में. सॉरी मतलब कविता से मेरा मतलब पोयम पोएट्री पोएट्री जो लिखी इंग्लिश में काव्य लिखा तो क्या क्या ये दो अलग हैं? नहीं है लेकिन अलग भी हैं और नहीं भी हैं, है ना. वही ऊर्जा जो मेरे अंदर है मेरे अंदर आई उसने इंस्पायर किया. अब मैं मत समझिएगा लेकिन हाँ एक इंस्पिरेशन आया उसने उसको प्रकट किया तो वो इंस्पिरेशन आया ऊर्जा लगी सारा ब्रेन बॉडी सब आया उसने एक काव्य को प्रकट किया. बट तो कौन है ये? दो भी हैं लेकिन एक है. देयर आर टू वर वन. एसेंस में एक है अभिव्यक्ति में दो हैं. देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मैनी वर्ल्ड्स इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट. ये नहीं कि केवल ये तो ज्ञान में है जब है नहीं अज्ञान में भी वही है. फर्क ये है कि ज्ञान में वो एक दूसरे को आंखों में डाल के बातें करते हैं और अज्ञान में छुपन छुपाई खेल रहे हैं. यही अंतर है. तो बताया ना वो हु में ऑफ राधा एंड कृष्णा आवर लव इज देयर आवर लव इज देयर किस. राधा एंड कृष्ण का जो प्रेम का वो छलक करके जो धरती पर गिरता है तब उसको उनकी जो यूनियन है उसी को हम यहां पर प्रेम के द्वारा ज्ञान में ढूंढते हैं कि उस यूनियन का आनंद तो उसको हम यहां पर ढूंढते हैं. तो वही एंड लाइट एंड डार्कनेस आर देयर आईज इंटरचेंज. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. वो बंद कर देते हैं आंख तो अज्ञान और वो खेल होता है ना. एक बार शिव जी की आंख को माता पार्वती ने पीछे से बंद कर दिया था तो अंधक असुर पैदा हो गया. वही खेल है. तो वो जब प्रकृति अपनी आंखें बंद कर लेती कहती कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो वो कहते मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ पर उनको नहीं दिख रही है. फिर एक समय आता है जब पट्टी खोल देते हैं देन यू रियलाइज कि डिवाइन वॉज ऑलवेज विद यू ऑलवेज 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 पर अज्ञान में नहीं प्रतीत होता है. तो ये आवर नॉलेज इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट एंड लाइट एंड डार्कनेस आर देयर आईज इंटरचेंज. कितना ये इसको कहें हम ये कह सकते हैं कि सेंसुअस पोइट्री को भी भाव को उन्होंने डिवाइन लेवल तक ले गए. आवर प्लेजर एंड पेन आर देयर रेसल एंड एम्ब्रेस. आपको करना तो यही है ईगो का आपका चूर चूर होनी है. अब कुश्ती लड़ोगे भगवान के साथ कि माई विल नॉट योर विल तो क्या होगा? रेसिल हो गई. रेसिल होगी तो भी चूर चूर हो गए. जीतने वाले तो वही हैं वो है ना खुसरो रैन सुहाग की मैं खेली पी के संग. जीत गए तो पिया मेरे हारी पी के संग. इस खेल में ये मतलब डिसाइडेड है हारने वाला ईगो ही है. आप बोलोगे माई विल भगवान कहेंगे ओके करके देख ले. अंत में आप जिस दिन बोलोगे दाई विल मतलब आप साधना पक्की हो गई. यहां वही है कि रेसिल एंड एम्ब्रेस. पेन कब होता है? जब हम माई विल. संतोष कब होता है? दाई विल. आवर डीड्स आवर होप्स आर इंटीमेट टू देयर टेल. कुछ नहीं छिपाया भगवान से. केवल कर्म नहीं कहते ना भगवान सब देखता है. केवल कर्म नहीं देख रहा है. कर्म तो मूर्ख देखते हैं. भगवान तो इंटेंट देखते हैं आपके हृदय में. आशाएं देखते हैं दुराशाएं देखते हैं निराशा सब देखते हैं. वो फेथ देखते हैं आइडिया देखते हैं विल देखते हैं चेष्टा अंदर की देखते हैं थॉट्स देखते हैं. तो यहां पर है अवर डीड्स अवर होप्स आर इंटीमेट टू दैट टेल दे आर मैरिड सीक्रेटली इन अवर थॉट एंड लाइफ. छुप गए तो अज्ञान के थॉट्स आ गए, मिल गए तो वही थॉट्स प्रकाशवान हो गए, मैरिड, दोनों का विवाह। द यूनिवर्स इज एन एंडलेस मैस्करेड, द यूनिवर्स इज एन एंडलेस मैस्करेड, फॉर नथिंग हियर इज अटरली व्हाट इट सीम्स। इट सीम्स, सीम्स क्या है, बाहर से जो दिख रहा है, लोनली सेल्फ, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, लेकिन सच क्या है, इट इज ए ड्रीम फैक्ट विजन ऑफ ए ट्रूथ। इसके अंदर सत्य छिपा है जो अपने को अभिव्यक्त कर रहा है, स्वप्न देख रहा है वही, तो वो हम नहीं देख पाते हैं स्वप्न को, हम बाहर जो प्रकट हो रहा है वो दिख रहा है। विच बट फॉर द ड्रीम वुड नॉट बी होल्ली ट्रू, क्योंकि वो इटर्नल ड्रीमर है। इसीलिए हम कितना भी बोल दें कि ये माया है, सब लोग जाते हैं गुरु जी के सुनने ना, गुरु जी बोलते हैं ये सब माया है, मिथ्या है, मोह है, बाहर आके क्या बातें होती हैं, मोबाइल निकाल के पहले देखते मिस्ड कॉल तो नहीं है, मैसेज आ गया, आप बेटा का प्रमोशन हो गया कहाँ, अरे ये मेरे बेटे का, वापस गुरु जी के पास जा रहे हैं, अरे आपकी बड़ी कृपा है कि हमारे बेटे का इंग्लैंड या अमेरिका में, अब तो नहीं बोलेंगे अमेरिका में लेकिन, और गुरु जी भी, हाँ देखो भगवान की बड़ी कृपा, अभी तो आप माया मोह समझा रहे थे। ये नहीं होता, क्योंकि ये भगवान की ही माया है और वो आपको ले जा रही है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना है, यू आर इन द प्रोसेस, यू कांट कट शॉर्ट, यू हैव टू अनटैंगल द नॉट, नॉट कट इट अब्रप्टली। आप इसको जोर से काटने की चेष्टा करो ये नहीं होगा, वो प्रोसेस है इवोल्यूशन की, जिससे आप सामर्थ्य भगवान का ऐश्वर्य प्रकट करते हो। इफ फेनोमेना स्टैंड्स आउट सिग्निफिकेंट अगेंस्ट डिम बैकग्राउंड्स ऑफ इटर्निटी, वी एक्सेप्ट इट्स फेस एंड पास बाय ऑल इट मीन्स। ए पार्ट इज सीन, वी टेक इट फॉर द होल। हम सच जो समझते हैं वही, उस दिन भी बात हो रही थी, किसी ने कहा कि नहीं सच बताओ, मैंने कहा पहले मैं तो जान लूं सच क्या है। क्यों मालूम नहीं है, मैंने कहा सच संपूर्णता में होता है, नहीं जानता संपूर्णता में। संपूर्णता मतलब किसी चीज का पास्ट क्या है, अभी कौन सी शक्तियां क्रियान्वित हुई हैं, कौन किस तरह वो जा रहा है, अनलेस यू नो द फुल ट्रूथ। लेकिन हम उसके बाहर की चीज को पकड़ के समझते हैं कि यही सच है। पार्ट इज सीन नॉट द होल, इसीलिए हम हर बार दुखी भी होते हैं और मूर्ख भी बनते हैं। दस दे हैव मेड देयर प्ले विद अस फॉर रोल्स, हम केवल फेनोमेना को देखते हैं और अपना अपना पार्ट हर एक व्यक्ति। अब देखिए एक ही व्यक्ति किसी के जीवन में विलेन का रोल प्ले कर रहा है, अगर आप पूछेंगे उसके इससे बुरा आदमी कोई नहीं, वही व्यक्ति किसी और के जीवन में देवता का रोल प्ले कर रहा है। अगर वोटिंग पर होता तो रावण को लोग कहते कि इज द बेस्ट, सबको फ्री में सोना, फ्री में पता नहीं क्या क्या दिया हुआ था, यही कहते ना कि रावण इज द बेस्ट, डेमोक्रेसी भी होती तो वोट दे देते, हमको क्या है, सोना तो दे ही रहा है। लेकिन अगर आप ज्ञानवान से पूछते, कहते भैया भटक गया बुरी तरह, इसको ठीक करो। मंदोदरी ठीक समझ गई, पर मंदोदरी भी संपूर्णता में देखती थी रावण को कि इसमें पॉसिबिलिटी है एक बड़ी सुंदर। राम जी ने भी उनको संपूर्णता में देखा, तो वही यहां पर वही बात है कि हम तो केवल हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं। अब आप जान के रोल प्ले करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ये नहीं कि आप विलेन बन जाइए जान के, लेकिन आप जिस भी चीज में हैं वहां पर आप अपने अंदर के सत्य को जानने की चेष्टा कीजिए। हो सकता है कि वो सत्य किसी को व्यथित भी कर सकता है, किसी को पीड़ा भी दे सकता है, जानबूझ के कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, पर मूल चीज ये है कि यू मस्ट ट्यून विद योर ओन इनमोस्ट ट्रूथ, और वो बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पर ये है कि वी हैव टू प्ले अ रोल, ऑथर एंड एक्टर विद हिमसेल्फ एज सीन, पर सच तो ये है कि वही है जो जिसको हम कहते हैं मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, वही हम बन गया है मल्टीपल एक्टर्स। इसीलिए किसी के प्रति कोई वो द्वेष नहीं कि उससे मुझे पीड़ा मिली, भगवान ही है जो इस रूप में आए तुम्हारे पास, कोई दूसरे व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति बड़ा महान होगा। तो ऑथर एंड एक्टर विद हिमसेल्फ एज सीन, ही मूव्स देयर एज द सोल एज नेचर शी। अब ये पुरुष प्रकृति का पूरा अध्याय उन्होंने समग्रता में समझा दिया जो यहां पर हो रहा है। पहले उन्होंने वहां का बताया, फिर यहां पर क्या घटित हो रहा है, यहां यहां भी वही एक सत्य है, लेकिन वो दो, वहां पर भगवान और उनकी शक्ति एक होके कार्य कर रहे हैं, विल और विजन में कोई भेद नहीं है, नॉलेज और पावर में कोई भेद नहीं है। यहां पर वो पुरुष और प्रकृति के रूप में प्रकट हो रहे हैं, जिसमें कभी प्रकृति देख नहीं पाती पुरुष को, लेकिन अज्ञान में भी वो उन्हीं को क्रिएट करने की चेष्टा कर रही है। और यहां पर भगवान छिपे हुए हैं, तो वो फॉर्म्स बना रही है, उन्हीं के लिए बना रही है, और जिस रूप फॉर्म होता है वो उसमें जाके विराजमान हो जाते हैं। फिर प्रकृति स्वयं देखती है, परफेक्ट फॉर्म नहीं है ये, तो मैंने घोड़ा बनाया है पर घोड़े पे चढ़ने वाला बनाना है मुझे भगवान। तो वो धीरे 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 एक एक फॉर्म अज्ञान में ये खेल चल रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। उसमें हम लोग कहाँ से आ गए? फॉर द जॉय ऑफ द प्ले मल्टीप्लिसिटी जो हुई है, तो भगवान एक हैं लेकिन वो अनेकत्व में प्रकट होते हैं, सोल नेचर, पुरुष और प्रकृति का खेल को टोटैलिटी में शेरविन बता रहे हैं। तो हम अगर वो दृष्टि से देखें, समग्र दृष्टि से, तो जीवन से वास्तव में पीड़ा समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब भेद दृष्टि से देखते हैं, ये अलग है, वो अलग है, ये अंधकार है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो फिर समस्या होती है। पर वो भी खेल का ही हिस्सा है, उन्होंने ही स्वयं को छिपाया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। कोई बात नहीं है, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने छिपाया है। इसीलिए कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी को भगवान की ओर मोड़ने के लिए कि कन्वर्ट कर दो, ये कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे रामायण में कहा गया है, सो जाने ही जिन राम जना ही, उन्होंने छिपाया हुआ है, जब वो चाहेंगे तो क्षण में स्वयं को प्रकट कर देंगे। सो दैट इज द होल प्रोसेस। अभी इसको अगले हफ्ते नहीं होगा, उसके बाद वाले हफ्ते होगा, क्योंकि अगले हफ्ते बीच ऑफिस में क्लास होगी। जय माँ।